ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज इतनी सुंदर सुहावनी सुबह में बहुत सुंदर विषय लेकर परमात्मा परिचय हम प्राप्त करेंगे। ये विषय हमारे सामने रखेंगे हमारे आदरणीय डॉक्टर गीता दीदी जी। मैं संक्षिप्त में उसका परिचय दूंगी। गीता दीदी भिनमाल राजस्थान से हमारे बीच में पहुंचे हैं। आप बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हैं। 15 साल की छोटी आयु में ही आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। आपको MSc डॉक्टर की मानद उपाधि अमेरिका की साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ से मिली है। 1981 में आपने ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया है। आप आध्यात्मिक प्रेरक वक्ता परामर्श विशेषज्ञ राजयोग प्रशिक्षिका है। 2017 में महाराष्ट्र विधानसभा एवं गवर्नर हाउस में योग दिवस पर भी आपने व्याख्यान दिया है। अनेक यूनिवर्सिटी कॉरपोरेट कंपनियां कॉलेजेस सरकारी उद्यमों और गैर सरकारी संस्थानों में आपने 1000 से भी अधिक व्याख्यान दिए हैं और 5000 से भी अधिक गांवों में जागृति कार्यक्रम किए हैं। भिनमाल क्षेत्र में 130 हेड मेडिकल कैंप आपने आयोजित किए हैं और सबसे बड़ी बात 11000 से भी ज्यादा जरूरतमंद लोगों के मोतियोबिंदी सर्जरी आपने निशुल्क की है। बहुत सारी विशेषताएं हमारी दीदी में, बहुत सारे विषय को आप सहज रीति से स्पष्ट कर देती है। बहुत सारे अवार्ड से भी दीदी को नवाजा गया है, जैसे कि 2024 में इंदौर से भारत श्री अवार्ड, 2026 उदयपुर से भारत विभूषण अवार्ड, 2022 में मानवाधिकार ग्लोबल पीस अवार्ड प्राप्त हुआ है। 2023 में आपको IIFTA से मुंबई से प्राप्त हुआ है। WHO और WBR आपको कोरोना काल में की गई सेवाओं के लिए सम्मान प्राप्त हुआ है। 2023 में आपको राष्ट्र हिंदी सम्मान भी प्राप्त हुआ है। तो ऐसी आदरणीय दीदी जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, आज ऐसा विशेष परमात्मा का अमूल्य रत्न हमको प्राप्त हुआ है जो परमात्मा का परिचय देंगे। हम दीदी के बारे में इतना ही कहेंगे, चेहरे पर सदा सरलता के मुस्कान है, वाणी में मीठा ज्ञान है, सेवा जिनका जीवन मंत्र है, ऐसी प्यारी हमारी गीता दीदी है। बहुत सुंदर एक मैं पर्सनल अपनी बात सुनाना चाहूंगी। कोई भी सब्जेक्ट दीदी जी को दिया जाए, कितना भी हार्ड हो, कोई भी हो, लेकिन बहुत सरल शब्दों में उसको प्रेजेंट करना ये दीदी की बहुत अच्छी विशेषता है। तो मैं कहूंगी गीता दीदी जी से जो परमात्मा का परिचय देंगे, उससे पहले मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि दीदी जी का बेज और पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे और हम सब कर्तन ध्वनि से दीदी जी का अभिवादन करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति।
शांति। परसों से लेकर ये एक मंत्र तो आपको पक्का हो ही गया होगा, जिससे भी मिलेंगे ओम शांति। घर जाने के बाद भी पहला शब्द क्या निकलेगा? फोन उठाएंगे तो क्यों हेलो करें, ओम शांति करें, अच्छी बात है। लेकिन कल सुबह आपने उसका अर्थ भी जरूर समझा होगा। ओम शांति मात्र बोलने के दो शब्द नहीं है। ओम यानी अहम, मैं, शांति मेरा स्वरूप है, तो मैं शांत स्वभाव वाली आत्मा हूं, ये याद रखना है। अमूमन हम देखते हैं कि हम ना सारा दिन परेशानी की बातों का वर्णन बहुत बार करते हैं, जैसे मैं अपने कलीग से परेशान हूं, मैं गर्मी से परेशान हूं, मैं ट्रैफिक से परेशान हूं, मैं नॉइज से परेशान हूं, मैं अपने बच्चों से परेशान हूं, मैं अपनी हेल्थ से परेशान हूं। ये बातें हम रिपीटेडली बोलते रहते हैं, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं कॉन्शियस में मैं परेशान हूं ये बैठ जाता है। साइकोलॉजी कहती है जो शब्द, जो वाक्य, जो थॉट बार बार आप करते हो, बोलते हो, वो विकसित होता है, उससे पावर मिलती है। आत्मा की पावर जाती है ना, बोलने में पावर जाती है, सोचने में पावर जाती है। तो हम क्या सोच रहे हैं, मैं परेशान हूं, तो वो चीज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और यहां आपने क्या सीखा, सब लोग मुस्कुराते हैं और कहते हैं ओम शांति। तो हम सब शांत है, हमें शांति प्रिय है, क्यों ये भी सोचना पड़ेगा। शांति अच्छी क्यों लगती है, जैसे बाजार में आम का सीजन आया है, जैसे पहला पहला आम दिखता है मार्केट में, हमें इच्छा होती है अब आम खाएंगे। इच्छा क्यों होती है, किसी ऐसे देश का व्यक्ति जिसने जिंदगी में कभी आम देखा नहीं हो, वो अगर भारत में घूम रहा है, उसे जगह जगह आम के ठेले दिखाई भी दे रहे हैं, तो क्या उससे इच्छा होती है, उसे तो नहीं होती कि ये मैं खाऊं। कोई कहे भी तो बहुत सोचेगा कि क्या करना चाहिए। हमें क्यों होती है, क्यों होती है, हाँ ये भाई शेयर, हाँ। क्योंकि हमने पहले कभी उसका स्वाद लिया है, अनुभव किया है, तो जो चीज अनुभव में है वो ताजा होती है, और वो इच्छा भी होती है, वो अनुभव याद भी आता है, स्मृति आती है। तो जब हम बार बार ये शांति की इच्छा रखते हैं, सारा विश्व कहता है शांति, ये अलग बात है कि शांति रख नहीं पा रहे हैं। एक जगह क्लासरूम में बहुत आवाज आ रही थी, तो किसी ने जाके पूछा कि क्या हो रहा है, बोले सब एक दूसरे को चुप कर रहे हैं इसलिए आवाज आ रही, सब दूसरे को बोल रहे हैं ना। तो हम शांति सभी चाहते हैं, लेकिन वो चाहना इसलिए है, ये भूल गए कि हमारा मूल स्वभाव शांत है, और हम जहां से आए हैं इस वर्ल्ड में, शेक्सपियर ने भी कहा है ना, द वर्ल्ड इज अ ह्यूज ड्रामा, वी आर ऑल एक्टर्स। तो हम इस स्टेज पर आए हैं, ये तो एक छोटा सा रोल है, लेकिन हम आए कहां से। कल सीखा ना मॉर्निंग में, किस किस ने कल का सवेरे का अटेंड किया, जरा ऑनेस्टली हाथ खड़ा कर दीजिए। ओके ओके, तो उसमें क्या सीखा हमने, मैं आत्मा हूं, भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूं, शरीर मेरा साधन है, और मैं आई कहां से हूं, परम धाम से, शांति धाम से, है ना। अभी शांति धाम से आई हुई आत्मा है, इसलिए उसको शांति की खोज रहती है ना, अच्छा लगता है उसको। तो हम सभी शांति धाम की निवासी आत्मा है, ये तो हमें पता कल चल गया। ये भी पता चला कि आत्मा में अच्छे विचार थे, कभी शांति से भरपूर भी थी, लेकिन आज हम वर्तमान को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत जल्दी हमारा टेम्पर हाई हो जाता है, बहुत जल्दी हम तनाव में आ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हमें तनाव दे जाती है, जबकि हमें अच्छी तरह से पता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, होगा वो, ये सब हम बराबर भाषण भी कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो गया, ऐसा करते ही हम तनाव में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आत्मा अपनी मूल स्थिति में अब नहीं है, जो उसका मूल स्वभाव था वो अब उसके पास नहीं है, तो उसको बाहर लाना है। तो ऊपर क्या आ गया है, अनेक प्रकार की लेयर्स चढ़ गई है, उसे हटा के और उसे बाहर लाना है। तो एक तो हम जगह जगह सुनते हैं पॉजिटिव थिंकिंग करो, अच्छा आचरण करने की सोचो, सुख देने की सोचो, ये भी इंसान कोशिश करता है, लेकिन देखा जाता है कि कुछ वक्त के बाद उसमें भी थक जाते हैं। मैंने तो सबका अच्छा किया, लेकिन देख लीजिएगा मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ फिर भी अच्छा नहीं हुआ, अब नहीं करना, ऐसा हो जाता है कभी कभी। मैंने उसे सुख दिया, देख लीजिए उन्होंने मेरे को क्या दिया, धोखा दिया। तो फिर हम क्या सोचने लगते, नहीं नहीं नहीं, तो हम टिक नहीं पा रहे, केवल खुद को समझाने से काम नहीं चल रहा है, तब किसकी जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल पावर की जरूरत है। हम अपने आप को ठीक स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें आसपास जो एनवायरनमेंट मिला है उसमें जो प्रकंपन है ना, उसमें जिस तरह के सोच, जिस तरह के दृश्य, जिस तरह की घटनाएं हैं, वो हमें प्रेरणा देने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे खासे संबंध होते हैं, एक सीरियल देखते हैं, ऐसे ही संबंध में धोखा हो गया, उस सीरियल देखते देखते वो सोचते हैं मेरे साथ भी हो सकता है, हुआ नहीं है, लेकिन वो एनवायरमेंट ऐसा है, बार बार ऐसी चीजें सामने आ रही है, तो सोचते नहीं नहीं नहीं, भरोसा तो किसी पर करने का ही नहीं। कहीं ना कहीं ये मान्यताएं हमारी दृढ़ हो रही है, ऐसा वातावरण है, इसलिए वातावरण से तो हम चार्ज नहीं हो पा रहे, अपने आप से भी कोशिश कर लिया नहीं हो पा रहा है, तब फिर किसी सोर्स की जरूरत है। तो आज हम उस सोर्स, और वो भी सुप्रीम सोर्स, अगर आपको कहीं कहा जाए कि आपको रिटेल में इस दाम पे चीज मिल रही है, लेकिन दूसरा एक पास में स्टोर है वहां होलसेल रेट पे मिल रहा है, जितना चाहिए भी मिलेगा, और होलसेल रेट हमेशा कितना होता है, ज्यादा होता है कम होता है, कम होता है ना, डायरेक्ट मिलता है ना, तो बीच में सारे जो एजेंट्स का, एजेंसी का जो भी कुछ होता है ना, बच जाता है। तो हम पसंद क्या करते हैं कि उस होलसेल स्टोर में चले जाएं। ठीक वैसे ही आज तक हमने किसी मार्गदर्शक को, किसी काउंसलर को, किसी गुरुजी को कहीं ना कहीं जरूर कोशिश की, अपनी समस्याएं बताई, थोड़ा मार्गदर्शन लिया, चलने की कोशिश भी की कि मुझे वो पता चले कि मैं कैसे सदा शांत रहूं। लेकिन फिर भी आज कभी कभी ऐसा होता है कि जिनको हम अपना मार्गदर्शक मानते हैं, जिनको हम अपना मोटिवेटर मानते हैं, कभी कभी उनकी भी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, आखिरी है तो वो ह्यूमन बीइंग ना, तो फिर हमारा पुरुषार्थ भी रुक जाता है, है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि आप मेरे बच्चे हो, किसी बच्चे को अपने पिता से कुछ पाना हो, मुलाकात करनी हो, तो क्या उससे उसके पीए से बात करनी पड़ेगी, पहले करनी पड़ेगी, किसको फोन लगाएगा वो, एक तो नंबर जरूर ऐसा होगा जो डायरेक्ट उठा के अपने पापा को बोलेगा मैं मिलना चाह रहा हूं, है ना, अधिकार होता है। तो हम सब सदियों से कहते आए हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, वो कौन है जिसको हम ये कहते आए। तो अगर वो है मेरा पिता, मैंने भी माना है, तो मुझे वो हक भी तो है ना, वो हक मुझे मिलना चाहिए ना, कि मैं जब चाहूं एनी टाइम मैं उनसे मिल सकूं, अपनी व्यथा सुना सकूं और उनसे शांति शक्ति ले सकूं। तो यहां आज के सेशन में हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको उस परम सत्ता का परिचय भी हो, आपका उनके साथ मिलन हो, ऐसी एक सिंपल विधि आपको मिल जाए, आप तैयार है उसको पाने के लिए, प्रभु से बात करने के लिए तैयार है। मोबाइल निकाल के देखिए, नंबर है क्या उनका, है, बात करना चाहते, आज तक उनका नंबर नहीं लिया, मांगा था किसी से? मांगा था? वरना मांगते हैं ना, आजकल गूगल में चले जाते, चैट जीपीटी में चले जाओ, सब कुछ मिल जाता है ना। तो क्या हमने कभी सोचा कि कभी मैं उनको भी डायल करके देखूं? नहीं ना, तो वो भी तो लेना पड़ेगा ना। और वो ऐसा नंबर हो जो हर कोई नहीं लगा सके, स्पेशली उनके बच्चे लगा सके, स्पेशली उनके जो क्लोज वंस है वही लगा सके, ऐसा भी एक सेपरेट नंबर, एक यूनिक नंबर वो देता है। खुशी नहीं हुई आपको वो नंबर चाहिए कि नहीं? देखिए जितनी प्यास होती है ना उतना भोजन अच्छा लगता है। तो हम सब चाहते हैं कि नहीं, एक बार जरा आवाज से बताइए, ठंडे ठंडे नहीं चाहते हैं? तो हाथ खड़ा कर दीजिए जरा। क्या सुबह सुबह एक्सरसाइज अच्छी होती है वैसे भी ना? ओके ओके। तो देखिए कुछ भी है आपको, कोई मैं यहां से बहुत बड़ा उपदेश दे रही हूं और आपको जी जी करके सुनना है, ऐसा नहीं है। जस्ट ये कन्वर्सेशन है, जस्ट ये हमारी बातचीत है। आपको भी कुछ पूछना हो तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें कुछ जानना है, हमें कुछ पाना है। हम चार दिन की छुट्टी लेकर माउंट आबू की ठंडे हवा खाने नहीं आए हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ तो बनने आए हैं, राइट? बनेंगे ना। तो परमात्म शक्ति क्या है? विवेकानंद जी को परमात्म साक्षात्कार हुआ जब उनके गुरु जी का देहांत हुआ, तो उन्होंने वर्णन किया है, राजयोग करके उनकी पुस्तक भी है, जिसमें उन्होंने एक ज्योत के रूप में वर्णन किया, और उसके बाद उनके जीवन को एक प्रकाश मिला भी। ये हम सभी ने इस सदी में, अगली पिछले दशक में ही देखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 150 समथिंग हुआ है जब विवेकानंद जी को ये अनुभूति हुई। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने उस ज्योति को देखा, लेकिन आज हम आपको साक्षात्कार का भी अर्थ बताते हैं। कुछ दिखाई देना मात्र साक्षात्कार नहीं है, लेकिन जानना उसको साक्षात्कार कहते हैं। जैसे कोई चीज आपने खाई है, कल भाई जी बता रहे थे परसों कि चीनी आपने खाई है, और आपको कोई कहे कि नहीं ये कड़वी है, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये जो दृढ़ता आपके अंदर है, ये है आपका उस चीज का अनुभव, ठीक है? तो परमात्मा का अनुभव होता है आंखों से या सूक्ष्म नेत्रों से भी, केवल देखने की बात नहीं है, ठीक है? कौन है ईश्वर? आज तक हमने जो जो रूप परमात्मा के सामने रखे होंगे, हम सबको देखते जाते हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है, सुप्रीम सोर्स की तरफ चलना है। वर्तमान में हमने बहुत से साकार रूप परमात्मा के आज तक पूजे हैं, अच्छा भी है, कोई ना कोई माध्यम नहीं होगा, स्वरूप नहीं होगा, तो हम किसको देखेंगे और किसके बारे में सोचेंगे? तो इसलिए साकार साधना, स्वरूप भक्ति जिसको कहते हैं, वो आज तक हमने की होगी, विष्णु जी के रूप में, शंकर जी के रूप में, अनेक प्रकार की शक्तियां जिसको कहते हैं, देवियों के रूप में, गणपति के रूप में, हनुमान जी के रूप में, अनेक स्वरूप में आज तक हमने परमात्मा को पूजने की, पाने की, दर्शन करने की कोशिश की है। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, ये आत्मा का संबंध जोड़ने की बात है। हम उसको जो पिता कहते हैं ना, वो किसका पिता? किसका पिता? आत्मा का पिता है ना। तो जैसे एक गाय का बछड़ा गाय के जैसा ही होगा, मनुष्य का बच्चा तो आत्मा के पिता की बात है। तो क्या आत्मा के पिता सशरीर होंगे? आत्मा कैसी है? तो इस देव स्वरूप को अनेक गुणों के कारण, पूजनीय स्वरूप के कारण देव स्वरूप बना के हम पूजते आए, लेकिन ये पूजा किसकी है? आत्मा के पिता परमात्मा की। खोज किसकी है? खोज किसकी है? परमात्मा की। लेकिन वर्णन किसका करेंगे? आप अपने पिता को, अपने भाई को, अपने फ्रेंड को याद करते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना याद करते 5 फुट 6 इंच का है, किसको परिचय देते तो ऐसा थोड़ी ना देते, आप क्या देते हैं, क्या देते हैं, बड़े स्वीट है, बड़े कैरिंग है, बहुत लविंग है, क्या वर्णन किया, याद आपको क्या है, उनके गुण याद है, है ना, वरना आपको ये थोड़ी नहीं याद है उनके पास शर्ट कितने, उनके पास जूते कितने, ये सब याद है क्या आपको, पता भी नहीं है, लेकिन आप उनके गुणों को याद करते हैं। ठीक है, तो गुणों का वर्णन करने के कारण गुणों के रूप में, मूर्त के रूप में, देवी स्वरूप में हमने आज तक उनको याद किया। पर वो जो सारे गुण है ना, उन गुणों में जो सर्वोच्च है वो कौन है, इस पर हम आएंगे। फिर धर्म संस्थापकों के रूप में भी हमने आराध्य देखा, आराध्य माना, जैसे इब्राहिम आए तो उन्होंने है ना देही में शिवा, इसी से शुरुआत की थी, है ना, और शुरुआत किया इस्लाम को। इस प्रकार के महात्मा बुद्ध जिन्होंने कहा लव इज गॉड, फेथ इज गॉड, उन्होंने भी यही कहा कि परमात्मा को ये एक मूर्त नहीं, लेकिन ये जो गुण है ना, इन गुणों का जो सर्वोच्च स्वरूप है वो ईश्वर है, इसलिए किसी मूर्त में ना अटकिए। महात्मा बुद्ध हमेशा ये कहते रहे कि किसी मूर्त में ना अटकिए, लेकिन ये भी करुण वास्तविकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मूर्ति बनी थी ना अफगानिस्तान में फायान, महात्मा बुद्ध की बनी थी, तो हमने जिन्होंने जो उपदेश दिया ना उनको ठीक से नहीं समझा, उसके बाद हमने उनकी मूर्ति बना दी। वो जीवन भर कहते रहे मूर्ति ना बनाइए, मूर्त के अंदर जो गुण है ना, व्यक्ति में जो गुण है उसे देखिए, है ना। फिर महावीर स्वामी जी आए, उन्होंने भी प्राकृतम देवी स्वरूपम कहा है, जो नवकार मंत्र है उसमें पहला नमो अरिहंतानम बोलते हैं, उनका कोई मूर्ति नहीं है, अरिहंत प्रभु की कोई मूर्ति नहीं है, नमो अरिहंतानम जिसको कहते वो जिनके कोई शत्रु नहीं वो अरिहंत है। तो कौन है वो, सूक्ष्म शक्ति की तरफ इशारा है। ईसा मसीह आए, उन्होंने क्या कहा, गॉड इज लाइट, स्वयं के बारे में उन्होंने कभी नहीं कहा आई एम गॉड, पढ़ लीजिए आप ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट सब में देख लीजिए, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड, ये उनका मैसेज रहा, मैं उनका संदेश लेकर आप सबके पास आया हूं, वो एक ज्योति है। आज भी हम देखते हैं चर्च में कैंडल जला के उस ज्योत के ऊपर ध्यान एकाग्र करते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी मैसेज वही था। गुरु नानक देव, 10 गुरुओं की परंपरा है सिखों में, नानक देव की वाणी हम सुनते हैं, क्या है उसमें, एक ओंकार निराकार अजोनी कर्ता पुरुष, सारी जो महिमा है निरंजन निराकार, है ना, आपस में मिलते हैं तो भी क्या बोलते हैं, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, कौन सा अकाल, अकाल जिसे काल नहीं खा सकता, काल जयी है जो अमर है, नश्वर हो नहीं, जो सदा नश्वर है जिसका कभी अंत नहीं, वो ईश्वर है। यानी उस स्वरूप की तरफ उन्होंने भी इशारा दिया, माला फेरने का विधि देखिए, सबने अपनी अपनी, किसी ने नीचे झुकने का कहा, किसी ने ऊपर, किसी ने हाथ ऐसे रखने का कहा, किसी ने ऐसे रखने का कहा, ये बात अलग है ना, लेकिन इशारा किस स्वरूप की तरफ अंततः गया, जैसे वो संस्कृत में सुभाषित है ना, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, अंततः जैसे सागर में ही वो सारा पानी जाता है चाहे कहीं भी गिरता है, अंततः सर्व नमस्कार एक तरफ जाते हैं, तो वो अंततः वाला अल्टीमेट ट्रूथ वो हमें ढूंढना चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक है, ये भी सब धर्मों ने कहा है कि नहीं, मानते हैं सभी, गॉड इज वन सभी ने कहा है, ठीक है ना, तो जरूर कोई तो एक स्वरूप है ना जिस पर हमें पहुंचना है, और कनेक्शन भी, योग भी तरीके से एकाग्रता देता है, क्योंकि वो एक के साथ है। एक के साथ है कनेक्शन, वही तो एकाग्रता देता है। वरना आजकल हम क्या देख रहे हैं लोगों को, आज कौन सा दिन है, सोमवार है, चलो आज तो शिव जी क्या चलते हैं। आज कौन सा दिन है, मंगलवार है, कहां चलेंगे, हनुमान जी क्या। बुधवार है, कहां चलेंगे, गणपति जी क्या। गुरुवार है, गुरु जी के पास, साईं बाबा के पास। शुक्रवार है, और कहीं। शनिवार है, आज शनिवार है, शनि जयंती है, शनि अमावस्या है आज, है ना। चले चले शनि जी को, माना हम बिखराव में चले गए। और कई बार तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूं तो किसको याद करूं, इनको करूं तो कहीं ये मिस तो नहीं हो रहा है। अच्छा फिर क्या करता है वो, छोटी सी कोठरी है घर में, कहीं हो तो वो भी नहीं, एक कोना है या एक अलमारी सा है, सब की फोटो लगा दी। टाइम कितना है, 2 से 5 मिनट, 2 अगरबत्ती जलाई, सबको 2 मिनट में खुश हो जाना, भगवान मान लेना, मुझे कुछ पता नहीं है कि इनमें से क्या सत्य है, कनेक्शन तो हुआ ही नहीं, खोज भी पूरी नहीं हुई, और चलिए जूता पहनो चलो ऑफिस, इतना ही टाइम है। फिर कहते हैं भगवान सुनता नहीं है, फिर कहते हैं भगवान की मेरे ऊपर कृपा नहीं बरस रही है, है ना। लेकिन आपका कनेक्शन कहाँ है, कनेक्शन किया ही कहाँ है, बातचीत हुई कहाँ अभी तक, पहचान हुई कहाँ। तो कहीं ना कहीं हम उस सत्य को पहुंचने की कोशिश आज करेंगे। कई धर्म स्थापक भी आए, और भी पंथ संप्रदाय जिसको कहे, जो अधिकतर द्वापर के बाद, जो मुख्य धर्म है वो द्वापर युग में अधिकतर शुरू हुए, क्योंकि 2500 वर्ष से पुराना इतिहास कहीं का नहीं है। चाहे इस्लाम का देख लीजिए, चाहे बौद्ध का देख लीजिए, कैलेंडर्स के अनुसार तो नहीं है, बाकी हम वर्णन तो कितना भी कर सकते हैं कि बहुत पहले था, ये था, वो तो फिर हम सुनते रहते हैं। तो 2500 साल में ये सारे धर्म द्वापर युग में कुछ शुरू हुए, उसके बाद द्वापर के बाद कलयुग में भी कुछ 500-600 साल पहले की भी कहानियां आप देखें तो भी बहुत सारे पंथ शुरू हुए। शंकराचार्य जी द्वापर में आए, उन्होंने ये देखा कि गृहस्थ जीवन में फंसा हुआ व्यक्ति मोह राग विकारों को छोड़ नहीं पा रहा है, इसलिए उन्होंने संन्यास की ओर ध्यान दिया और एक संन्यास मार्ग चलाया, जो आदि शंकराचार्य जी थे। बाद में हम देखते हैं कि सन्यासियों में भी इतने सारे अलग अलग मत मतांतर आज भी है। उसके बाद स्वामीनारायण संप्रदाय भी आप देख रहे हैं कई स्थानों पर, जिन्होंने भी एक विष्णु के ही रूप में, नीलकंठ के रूप में, नीलवर्णी के रूप में वर्णन किया कि जिन्होंने हिमालय में तपस्या की और फिर उनको आज बहुत से लोग उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सेंट जेवियर्स आए, जिनके आप बहुत जगह स्कूल्स वगैरह देखते होंगे, ऐसे कई और भी क्रिश्चियंस में भी आते गए। ख्वाजा के रूप में भी बहुत जगह आप दरगाह देखते, जैसे राजस्थान में भी प्रसिद्ध है, अजमेर में, और भी कई जगह है यूपी में भी। साईं बाबा के रूप में भी कई लोगों ने अनेक स्वरूप से देखा, परंतु ये सब कौन थे, ये देवात्माएं नहीं थे, ये धर्म स्थापक भी नहीं थे एक्चुअली, ये किसी न किसी पंथ को प्रेरित करके, जो पुराने धर्म चल रहे थे उसमें ही कुछ न कुछ नवीनता लाकर एक नए विचार के साथ उन्होंने एक नया सिस्टम, एक नई विधि दिया कि अगर इन सब में ठीक नहीं चल रहे हैं लोग तो थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। तो ये इम्प्रूव्ड वर्शन के रूप में उन्होंने कुछ न कुछ और अपने धर्म को अधिक आगे बढ़ाने की कोशिश की। जैसे एक मकान होता है ना, थोड़ा जर्जर होता जाता है, तो पहले पहले तो हम थोड़ा सा कलर ये वो करके सोचते चल जाएगा, 2 साल के बाद लगता है कि थोड़ा और जरूरत है, प्लास्टर भी गिर रहा है, फिर वो तो प्लास्टर भी एक बार दोबारा कर लेते हैं, है ना। लेकिन फिर जब बहुत ज्यादा डैमेज होने लगता है फिर क्या करना पड़ता है, फिर कहते हैं कि अब ये मकान इसमें नहीं रह पाएंगे, इसको छोड़ दीजिएगा, और अब जो है नया ही इसको गिरा के बनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आज तक हम देखते आए हैं कि अनेक सपोर्ट्स देकर आत्मा को परमात्मा की तरफ ले जाने की, शांति की तरफ ले जाने की बहुत कोशिशें हुई है और सभी सत्य है। उस समय के लिए वही परम सत्य था, आवश्यक था, वो उन्होंने किया। जैसे कभी क्रिया कांड बहुत बढ़ गया था तो स्वामी दयानंद सरस्वती आए, उन्होंने उसके विरोध में काम किया, है ना। कभी सती प्रथा ये वो बहुत बढ़ गया था तो राजा राम मोहन राय आए, उन्होंने उस पर काम किया, है ना। तो ऐसे समय अनुसार जो भी पंथ कल्ट्स आए उन्होंने बहुत अच्छा उस प्रॉब्लम के ऊपर काम किया और इसलिए उनकी स्वीकार्यता भी बढ़ी, उनके फॉलोअर्स भी बढ़े। परंतु आज हमें अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ जाना। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नेचर इज गॉड, क्योंकि देता है, परमात्मा का दूसरा नाम है दाता। तो दुनिया में दाता कौन है? तो कहते हैं नदी न पिए कभी अपना जल, पेड़ न खाते कभी अपने फल, है ना। तरुवर सरुवर संत जन, चौथा बरसे मेह, परमारथ रे कारण चारो धरिया देह। ऐसा हमारे यहाँ राजस्थान में भी एक उक्ति है। तो ये सब परोपकारी है ना, प्रकृति देती है, इसलिए उन्हें भी देव रूप में हम पूजते हैं। देवता का मतलब है वो दे रहे हैं। तो वृक्ष से हमें कितने सारे लाभ है, हमसे आप बहुत अच्छा अनुभवी है। सूर्य, इसलिए सवेरे सवेरे सूर्य को अर्घ्य देना, छठ पूजा हमारे यहाँ पे होती है। तो वो जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है ना। नदियां भी देती है, लेकिन ये भी करुण वास्तविकता है कि भारत में ही नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है और भारत की ही नदियों में इतना कचरा मिलता है। जहां पे नदियों को पूजा नहीं जाता है वहां आप देखेंगे तो नदियां बहुत साफ है। कारण दूसरे भी है, आबादी कम है, बहुत कुछ और भी है, लेकिन फिर हम कैसे इनको देव मान रहे हैं, देवी मान रहे हैं, जिसमें आप कचरा बहा रहे हो, घर का पानी भी नाली का जा रहा है ना, और एक तरफ आप देव भी कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज्ड भी है और अज्ञान में भी है, मानना पड़ेगा इस बात को। और हम अंदर से उस मान्यता को और ज्यादा समझने की हिम्मत नहीं रख पा रहे। हम कहते हैं अरे भाई हमारे पुरखों ने कहा है, करना तो पड़ेगा, ये सब मान के चलना तो पड़ेगा। ईश्वर को खुश नहीं रख सकते, कम से कम इतना तो करें कि ईश्वर नाराज न हो जाए। अक्सर हम ईश्वर के प्रति प्रेम कम और डर वाली चीजें ज्यादा रख रहे हैं, भाई भगवान नाराज हो जाएगा, कर लो। पंडित जी आके बोलते तुम्हारे दादाजी ने यहां मंदिर बनाया था, तुमने उसका ध्यान नहीं रखा, बनाओ दोबारा, नहीं तो कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाद में भले मंदिर बनाने के बाद मुझे फुर्सत नहीं है कि वहां जाके मैं बैठूं भी, पर बना दो, डर लग रहा है। दो ही तरीके से आज ईश्वर को बजा जा रहा है, याद किया जा रहा है, एक तो डर से, दूसरा इच्छा से। जब कुछ मांगना है सारी जगह से, सब जगह हाथ खड़े हो गए, फिर जाते हैं कहां, अब ईश्वर तू कुछ कर। तो ये दोनों ही भक्ति को रामायण में भी आसुरी भक्ति कहा गया है। डर किससे, वो कौन है, वो कौन है, पिता है, वो कल्याणकारी है, सत्यम शिवम सुंदरम है, और हम उसे डर रहे हैं। इसका मतलब जरूर हमने या तो अपने अंदर गड़बड़ की है इसलिए हमको डर लगता है। किसी का पिता पुलिस ऑफिसर हो उसके घर में तो रोज पुलिस की गाड़ी आती है, लेकिन जो अपराधी होता है वो पड़ोस की गली में भी अगर पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दे तो क्या होने लगता है, क्यों डर रहा है, वो पुलिस से डर रहा है, किस लिए डर रहा है, उसको अपनी अंदर की वो जो है ना अपराध भाव वो डरा रहा है कि मैं कहीं इनकी रडार में आ गया तो डर माना हम सही रूप से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। और इच्छाएं भी क्या है, कल भी सुनाया था, इच्छा हमेशा परमात्मा का एक स्लोगन है, बच्चे इच्छा आपको अच्छा बनने नहीं देती, इच्छा से आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इच्छा के कारण आप साइड के छोटे मोटे रास्ते पकड़ लेते हैं, इच्छा के कारण आप अपने संस्कारों को छोड़ देते हैं। इच्छा जब हावी होती है तो कॉन्शियस लेवल नीचे आ जाता है, कॉन्शियस नहीं मानता वो काम भी कर लेते हैं क्योंकि वो जोश आ जाता है, कामना इच्छा। आप देख रहे हैं ना दुनिया में कितने काम हो रहे हैं, है ना, कितने रेप हो रहे हैं, सबके पीछे क्या है? मनुष्य अपने आप को भूल जाता है जब उस पर कामना या इच्छा हावी होती है। तो परमात्मा के सामने भी जो इच्छा से आप जाते हैं तो आपका कॉन्शियस तो काम ही नहीं कर रहा है, आपको तो वही दिख रहा है कि मुझे ये मिल जाए, मैं उससे आगे चला जाऊं, मैं उसको परास्त कर दूं। तो वास्तव में प्रकृति को भी हमने फॉलो नहीं किया, अग्नि देव कहते हैं। फिर प्राणी मात्र में भी कईयों की हम पूजा करते, जैसे भाई जी बता रहे थे गोवर्धन पूजा है ना, बिल्ली को भी हमने ये किया। तो उसके पीछे हमने सांसारिक भौतिक अपने लाभ के लिए अवश्य इन सब सिस्टम को किया और इससे प्राकृतिक बैलेंस बना रहा, लेकिन ये ईश्वर की साधना नहीं है। ईश्वर प्राप्ति केवल उससे नहीं हो जाती है, ये जीवन जरूर संतुलित चलाने के तरीके हैं, या कारोबार या अपने व्यवसाय को ठीक रखने के तरीके ये जरूर थे जो हमारी संस्कृति ने हमको सिखाए। उसमें भी कई बार तो अंधश्रद्धा चलती रहती है। एक बार किसी घर में, शायद आपने सुना ही होगा, एक सेठ जी थे, वो घर में पूजा पाठ करते थे, तो अपने बच्चों को कहा करते थे मेरी उम्र हो चली है, कल को मैं चला जाऊं तो इस घर में पूजा पाठ होते रहना चाहिए, तो बच्चों कभी पास में बैठा करो, करो नहीं तो देखा करो, तो बाद में तुम करते रहना। बच्चे देखते रहते थे, तो सेठ जी पूजा सवेरे उठ के करते थे, तो उनके घर में एक बिल्ली पाली हुई थी, उनके प्यारे प्यारे बच्चे भी थे, बहुत प्यार करते थे सेठ जी को। तो सवेरे उठते ही जब पूजा नहा धो के निकलना, तो वो बच्चे तो खेलने आ जाते हैं उनके पास, तो उनको पूजा से पहले उनको टच नहीं करना है ना, तो वो कहते थे अपने नौकर को सबसे पहले इसका टोकरा जो रखा था घर उसके अंदर इसको डालो, चलो अब पूजा की सामग्री लाओ, अब मैं पूजा करता हूं। तो बच्चों ने ये सब बिल्कुल ऑब्जर्व किया हुआ था कि पूजा कैसे होती है। अचानक एक दिन सेठ जी चल बसे, अब बच्चों के ऊपर आया, बच्चों ने कहा चलो अभी हम परंपरा को निभाएंगे। कुछ दिन तो ठीक ठाक सब कुछ चला, लेकिन एक दिन गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? वो बिल्ली मर गई। बोला अब कैसे पूजा हो सकती? बोले इससे क्या है? बोले पूजा की पहली विधि तो ये है ना कि बिल्ली को उस घर में टोकरे में डालना। फॉलो तो कर रहे थे लेकिन पता कुछ नहीं था, वो बिल्ली तंग न करे इसलिए रखा था। फिर आखिरी समाधान ये निकला कि दूसरी बिल्ली लाई जाए, उसको पाला जाए और फिर पूजा शुरू होगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हम पूरा जाने बिना, केवल परंपरा है, पुरखों ने कहा है, उन्होंने कहा है, किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, प्राप्ति क्या हो रही है वो तो अपने दिल पर हाथ रख के अपने कॉन्शियस में देखना पड़ेगा कि आज मनुष्यता ऊपर उठी है कि नीचे आ रही है। करने को तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं परंतु मनुष्यता अपनी श्रेष्ठ स्थिति तक नहीं पहुंच पा रही है। अब हमें डिसाइड करना है, एक है निराकार ईश्वर है जिनको देवों के देव कहा है, जिनके लिए गीता में कहा है जैसे हाथियों में ऐरावत हाथी है, जैसे मणियों में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मणि है, जैसे रथ में श्रेष्ठ अग्नि रथ है, जैसे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हाथी है, सर्व से बड़ा है, इस तरह का वर्णन करके परमात्मा ने कहा ऐसे सर्व आत्माओं में सर्वोत्तम और सुप्रीम मैं हूं। यानी आत्माओं में जो उत्तम है वो सुप्रीम सोल, एक तो वो मान्यता पहली है। फिर शास्त्रों के अनुसार और भी कई सारी चीजें हम सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है, वो दिखाई नहीं देता, सबके अंदर है। चलिए मान लेते सबके अंदर है और ये भावना बहुत अच्छी है। अगर सबके अंदर ईश्वर को माना जाए और देखा जाए तो दुनिया की सारी समस्याओं का हल हो जाए कि ना हो जाए, ना कोई किसकी निंदा करे, ना कोई किसकी गिलानी करे, ना कोई किसको दुख दे, फिर तो सब कुछ ठीक ही हो जाए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। किस व्यापारी को अपने ग्राहक में भगवान दिखता है, किस सास को अपनी बहू में भगवान दिख रहा है? तो कहने को तो हमने कह दिया ईश्वर सर्वव्यापी है, पर इसके पीछे एक लॉजिक ये था कि हमारे जो पुरातन ऋषि थे उन्होंने एक भविष्य का दर्शन करके देखा कि मनुष्य धीरे 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 इतना स्वार्थी होता जा रहा है। माफ कीजिएगा, जो अपने आसपास जरा सो रहे हो उनको जगाना प्लीज, नहीं तो वो लहर ऐसी चलेगी कि और लोग भी सो जाएंगे। आप लोग को यहां की दिनचर्या में थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, घर में आदत नहीं होगी तो जल्दी उठना। ठीक है, सब जाग रहे हैं? एक बार हाथ खड़ा करके अपनी जागृति का परिचय दे दीजिए। हाँ, यस, कुछ तो करना होगा क्योंकि ये बातें शायद आप जीवन में पहली बार सुने और हो सकता है बाद में पता नहीं कब सुने। हम तो चाहते हैं कि रोज सुने आप, पर हो सकता है आपको इस तरह से ये प्राथमिक जो मेडिटेशन का स्टेप है वो सीखना बहुत आवश्यक है। तो हमारी यही शुभ भावना है कि आप ध्यान से सुन पाए। तो परमात्मा, उन्होंने देखा कि मनुष्य इतना स्वार्थी होता जा रहा है कि वो अपने सिवाय सारे प्राणियों की हत्या करने को तैयार है, और वो करने लगा ना इंसान। इंसान ने पशु प्राणियों को मार के खाना शुरू किया। तो उन्होंने एक पहले से हमें भारतीयता में चिंतन दिया कि सब में परमात्मा का वास है। तो जो ये दृष्टि रखेगा वो कम से कम हिंसा नहीं करेगा, तकलीफ नहीं देगा, वरना तो उन्होंने देखा इंसान इंसान कमजोर इंसान को भी खाएगा। लेकिन फिर भी ये तो हुआ, ये मान्यता भी चली कि परमात्मा सर्वव्यापी है, और दूसरी ओर हिंसा करने वाले हिंसा भी करते रहे। और कुछ दिनों पहले तो आपको पता है हमने एक विस्तृत रिपोर्ट दुनिया में सुनी, यस, कि जिसके अंदर हमें आज भी ऐसे नर पिशाचों की उपस्थिति का एहसास हो गया कि जो आज भी मासूम बच्चों को भी केक की तरह काट के खा रहे। सामने आ गए फोटोज वीडियोस। हम कैसे कह सकते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है? न वो काटने वाला ईश्वर उसके अंदर हो सकता है, न जिसको काटा गया वो उसके अंदर ईश्वर हो सकता है। क्योंकि ईश्वर माना क्या? सर्व गुणों का स्रोत। जैसे कहीं अग्नि है और आप ये कह दें कि अग्नि तो है पर गर्मी नहीं है, ये संभव है? कहीं बर्फ पड़ा है लेकिन ठंडक नहीं है, क्या ये संभव है? जो चीज जहां है वहां उसके गुण उपस्थित है, विद्यमान है। तो जहां परमात्मा होंगे वहां क्या होगा? प्रेम होगा, शांति होगी, पवित्रता होगी, वो उससे भरपूर है, वो उसका स्रोत है। तो ये कैसे आज हम संसार में देखते हैं, तो मनुष्य तो धीरे धीरे स्वार्थ के आधार पे, नफरत के आधार पे, अपवित्र विचारों से जीने लगा है। तो ये कतई नहीं विश्वास होता कि परमात्मा सबके अंदर विराजमान है। और गीता में भगवान ने क्या कहा है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानी, जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब मैं आता हूं। इसका मतलब क्या है? परमात्मा ने अगर यहां मैं हूं तो क्या जरूरत है उनके पधारने की, वो तो यहां है ही ना। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा समय आता है जब अति धर्म ग्लानी होती है, जब धर्म की हानि होती है, जब सज्जनों के ऊपर संकट आता है, तब मुझे आना पड़ता है अधर्म का नाश करने, सत धर्म की पुनर्स्थापना करने। ये भगवान के महावाक्य भी बताते हैं कि वो यहां व्यापक नहीं है, उन्हें अवतरित होना पड़ता है। आत्माओं में भी कई लोग ढूंढते हैं, कुछ लोग शरीर छोड़ के चले गए, फिर उनकी भी पूजा करते हैं कि वो आते हैं, वो इच्छाएं पूरी करते हैं, वो रास्ता बताते हैं। वो जो उनकी इन्फॉर्मेशन है उतना काम वो शरीर छोड़ने के बाद भी कुछ आत्माएं कर लेती हैं, वो एक अलग पूरा बात है। अगर उसके विस्तार में जाएंगे तो हम परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। तो कोई भी भटकती हुई आत्माएं, शरीर के बिना घूमने वाली आत्माएं, ये भी परमात्मा नहीं है, या उनको साधने वाले कोई परम सिद्धि को प्राप्त नहीं करते हैं। हाँ, ये तंत्र मंत्र का विज्ञान भी है जिसके आधार पे कुछ सिद्धियां और कुछ अच्छा भला बुरा काम कर लेते हैं कुछ लोग। आजकल की युवा पीढ़ी कई बार इन सब चक्करों से मुक्त होना चाहती है, कहती है कि मुझे किसको भी नहीं मानना, मैं अपना काम ऑनेस्टली करूं, मैं सोचता हूं कर्म ही ईश्वर है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही मेरी पूजा है। चलिए अच्छी बात है ये तो, लेकिन आप कर्म करोगे तो कर्म में कभी हार कभी जीत, कभी अच्छा कभी बुरा फल मिलेगा। तब भी जब आपका मन उद्विग्न होगा तब भी तो आपको कुछ तो शक्ति चाहिए ना, क्योंकि कर्म अपने आप में शक्ति नहीं है, कर्म तो करना पड़ता है, उसके बाद उसका फल अच्छा भी होता है, साधारण भी होता है। तो कर्म करना बिल्कुल बुरा नहीं है, अच्छा और ऑनेस्टली करना चाहिए, लेकिन मात्र कर्म को पूजा मानने वाले भी वो सिद्धि हासिल शांति वाली नहीं कर पाते हैं। अक्सर मनुष्य उलझता ही अपने कर्मों से, अपने कर्म अपनी गलतियां ही इंसान को ज्यादा भटकाती है, दूसरों के संसार के दुखों से इतना दुखी नहीं होता है व्यक्ति। लेकिन अधिकतर टेंशन कब आता है, पड़ोसी के बिगड़ने से टेंशन आता है, पड़ोसी के बच्चों के बिगड़ने से टेंशन आता है, कब ज्यादा आता है, जब मेरी कुछ गलतियां हो गई, मेरे अपने लोगों से कुछ हो गया, तब हम अधिक तनाव में आते हैं। इसलिए कर्म ही काफी नहीं है। तो किसे सही माने और किस मान्यता और किस विचार पर, किस मत पर हम चले, तो यहां दिखाया है एक पुरानी कथा, ये बताई जाती है कि एक हाथी और उसके पास पांच अंधे अंध व्यक्ति पहुंचते हैं और पांचों ही उस हाथी को पहचानना चाहते हैं, उस को महसूस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो चूंकि वो देख नहीं पाते हैं तो वो कैसे पहचानेंगे, ब्रेल लिपि भी होती तो कैसे देखते हैं, वो टच करके, स्पर्श से। तो पांच अपने अपने हिसाब से टच करते हैं, एक व्यक्ति उसकी सूंड को टच करके और उसका वर्णन करता है कि हाथी यानी जो भी ये है वो बिल्कुल सर्प की तरह है, सांप की तरह है। कोई दूसरा उसके कान तक पहुंचता है तो वो कान को पकड़ के महसूस करके कहता है वो हाथी सूप जैसा है, है ना। कोई फिर उसकी पीठ तक पहुंचता है, पीठ दूर दूर तक उसका हाथ घूमता ही रहता है, तो कहते हैं तो बहुत बड़ी दीवार जैसा है। फिर कोई उसके पूंछ को पकड़ता है तो वो कहता है हाथी रस्सी के जैसा है। कोई उसके पांव को पकड़ता है तो वो कहता हाथी तो पिलर जैसा है। पांचों में झगड़ा हो जाता है। अब आप बताइए कि पांचों में से सही कौन और गलत कौन, क्या कहेंगे? कहने को तो पांचों ही सही है क्योंकि उन्होंने जितना अनुभव किया वो तो सही था, उसी व्याख्या उन्होंने की। लेकिन चूंकि पूरा हाथी किसी ने भी नहीं देखा इसलिए सब गलत है। कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ है, हमने जो अनुभूतियां की उसके आधार पे हमने अलग अलग प्रकार से अपनी फेथ को वर्णन किया और इसलिए दुनिया में इतनी सारी मान्यताएं परमात्मा के बारे में है। परंतु सत्य को जानना है तो परमात्मा ने गीता में भी कहा है मैं जो हूं जैसा हूं मेरा परिचय मैं स्वयं देता हूं, और ये भी कहा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है मुझे आना पड़ता है अपना सत्य परिचय देने। लेकिन उसके पहले वो हमें अपना परिचय भी देता है कि तुम कौन हो, और फिर स्वयं का परिचय भी स्वयं देते हैं। पर वो कैसे देते हैं, उसके पहले परमात्मा हम किसे कहें? पांच पैमाना, जैसे मैं आपको कह दूं कि मैं डॉक्टर हूं तो आप तुरंत सोचेंगे कि क्या आपने MBBS किया है, क्या आप सर्जन है तो आप सर्जरी जानते हैं, कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना कि आप क्यों डॉक्टर का टाइटल लगाते हैं। तो परमात्मा किसको कहना चाहिए, वरना तो आज कोई भी कह दे और ऐसा हो भी रहा है समाज में, कुछ कुछ दिनों में नए नए कोई ना कोई ऐसे प्रकट होते हैं जो अपने आप को कह देते हैं, क्या कह देते हैं, वो कहे ना कहे लेकिन आसपास वाले फिर उसी प्रकार का उनका प्रचार कर देते हैं, है ना, सब कुछ पा लिया क्योंकि उनकी जो इच्छा थी उन्होंने पा ली होती है, और फिर वो चल भी पड़ता है, लेकिन कुछ समय के बाद देखते हैं तो कुछ भगवान जेल में होते हैं, फिर बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या हुआ भाई, सारे जगत को मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाले दाता वो होते हैं ईश्वर तो, लेकिन ये तथा कथित कई बार हो जाता है क्योंकि सबकी कॉपी होती है तो भगवान की भी कॉपी होगी। परमात्मा किसको कहना चाहिए, पहला जो सर्वज्ञ हो, ज्ञाता हो, जिसे संसार के आदि मध्य अंत का, हमारे सारे जन्मों का, हमारे सभी प्रकार के दुखों के अंत का जिसको ज्ञान है, सर्वज्ञ हो वो ईश्वर है। सर्वशक्ति मानो जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी जिसके लिए असंभव नहीं है वो है परमात्मा। जो सर्वोच्च हो, ऐसा ना हो कि उनको भी किसी और से ध्यान साधना करके शक्ति लेनी पड़ती हो, ऐसा ना हो, वो सर्वोच्च हो, सुप्रीम। फिर सर्वोपरि हो, कहते भी है ना ऊंचा तेरा धाम, है ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे से ऊंचा भगवान, सर्व ऊपर, ऊपर पद में भी स्थान में भी, इस तरह से सर्व धर्मों में जिनकी मान्यता हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि परमात्मा किसी कल्ट का, किसी एक धर्म का पिता नहीं हो सकता, वो विश्व नियंता है, वो सर्व आत्माओं का पिता है, उसी को हम परमात्मा कहेंगे। तो सर्व धर्म में जिस एक चीज की मान्यता है वो कौन है, हमें उस पर ध्यान देना होगा। अगर हम किसी भी फोटो को, किसी भी मूर्ति को अगर देखेंगे तो किसी एक पंथ के संप्रदाय के अंदर ही उनकी मान्यता होगी, दूसरे के अंदर नहीं होगी। लेकिन जब हम निराकार पर आते हैं, जब हम ज्योति स्वरूप पर आते हैं, तो ज्योति की मान्यता सब जगह है, कहीं दीपक के रूप में है, कहीं अग्नि के रूप में है, कहीं कैंडल के रूप में है, कहीं उसको काबा के पत्थर के बीच में बिंदु के रूप में है, कहीं शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड के बीच में ज्योति बिंदु के रूप में है। जहां भी देखिए, विधि विधान भले अलग है, पूजा करने के तरीके भले अलग है, संबोधन करने की बातें भी अलग है, और ये तो रहेगा, आप अपने पिताजी को पिताजी कहते थे, आपके बच्चे आपको पापा कहते हैं, उनके बच्चे उनको डैडी कहते हैं, आजकल तो और भी बहुत कुछ, हाय डैड तो ये संबोधन है, लेकिन हम जानते हैं ना कि संबंध कौन सा है, पुत्र का और पिता का। समय अनुसार भाषा में, संबोधन में बदलाव आ गए हैं, है ना, परंतु है तो वो संबंध वही कि उन्होंने उनको जन्मा है, उनके पिता है, रचयिता है। ठीक वैसे ही ज्योति ये कॉमन है, फिर उसको पूजने के तरीके, कोई या अल्लाह कहता है, कोई ओ गॉड कहता है, कोई हे प्रभु कहता है, कोई हे ईश्वर कहता है, कोई देही में शिवा कहता है, कोई अल्लाहू अकबर कहता है, अलग अलग अल्लाहू अकबर जो मस्जिदों में आवाज सुनते हैं ना, ये भी अकबर कहां से आया शब्द, किसी व्यक्ति को थोड़ी ना कहते हैं, जो न कभी जन्मा है, जो न कभी कब्र में जाएगा वो ईश्वर है, जो जन्म लेता है वो मनुष्य है, जो जन्म और मृत्यु से परे है वो ईश्वर है। आप भारत में ही देख लीजिए, श्री राम, श्री कृष्ण आदि की बहुत लंबी कहानी है, जीवन गाथा हम गाते हैं, सबके माता पिता के द्वारा उनका जन्म का वर्णन है, लेकिन निराकार शिव क्या उनके कोई माता पिता है? शिव का दूसरा नाम है शंभू, शंभू अपभ्रंश हुआ शब्द है, मूल शब्द है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट होते हैं वो शिव है, उनके कोई माता पिता नहीं है, उनके कोई फिजिकल फॉर्म में जन्म नहीं होता। आप देखेंगे शिव जी के मंदिर बनते, शिवालय जब बनते हैं ना, तो आपने एक चीज नोट की होगी, देवताओं का मंदिर बनता है तो पूरा मंदिर बन जाता है, मूर्ति का स्थापना प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन शिवालय जब बनता है तो कुछ तरीका अलग होता है, केवल साइड साइड का कंस्ट्रक्शन होता है, ऊपर का नहीं होता है। जिस दिन प्रतिष्ठा होती है शिवलिंग ऊपर से उतार के प्रतिष्ठापित किया जाता है, और प्रतिष्ठापित होने के बाद ऊपर का घुमट बनता है। दिस इज द डिफरेंस। सनातन ने सब कुछ स्पष्ट किया है, इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े मनीषियों ने कहा है एक दिन आएगा संसार की सारी मान्यताओं को सनातन के तरफ आना ही होगा, क्योंकि इटर्नल ट्रुथ सनातन के पास ही है, अन्य किसी के पास नहीं है। और उसी सत्य को यहां परमात्मा शिव निराकार ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के दिव्य साक्षात्कार के बाद उनके द्वारा, उनके मुख से ये वाणी, दिव्य वाणी परमात्मा की हमने सुनी, वहां ये सत्य उद्घाटित हुआ है कि वो निराकार है और वही संसार का नियंता है, सर्व आत्माओं का पिता है, जिनकी हम पूरी महिमा अच्छी तरह से समझेंगे। निराकार का मतलब ये नहीं कि उसका कोई आकार नहीं है, जो सबसे निराला है, सदैव जो निरंकार, यानी स्थूल रूप में कभी नहीं और सूक्ष्म रूप में ही अपना कार्य करता है। गीता में भी कहा है, मुझे जब अपना कार्य करना होता है मैं प्रकृति को अधीन कर, परकाया प्रवेश कर अपना कार्य करता हूं, मैं जन्म नहीं लेता हूं, मैं अजन्मा हूं। ये महावाक्य श्री कृष्ण जी के नहीं, उस निराकार ने बोला। माध्यम कोई भी दिखाया गया है, माध्यम कोई भी हो सकता है, परमात्मा को अपना कार्य करना है। ज्योति बिंदु ये उनका स्वरूप है और वो अविनाशी है, ना उसे कभी बनाया गया। जैसे आत्मा की महिमा कल आपने सुनी होगी, जिसे न शस्त्र काट सकता, जिसे न अग्नि जला सकती, जिसे न पानी भिगो सकता, जिसे न वायु सुखा सकता, वो है आत्मा। तो आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। तो वो भी है अविनाशी, जिसका कोई विनाश नहीं। फिर भी उनका नाम है, नाम है शिव, जो बिल्कुल अर्थ सहित है, संस्कृत जानने वाले समझते हैं। शिवमस्तु, हम आशीर्वाद देते तो बोलते है, मतलब आपका कल्याण हो। तो शिव अर्थात कल्याणकारी। बिंदु, कई भाषाओं के अंदर जब कहीं पॉइंट लगाना है तो शिव बोलते हैं। सिंधी में भी जब वाक्य पूरा करके फुल स्टॉप, तो शिव ऐसा बोला जाता है। तो बीज है, फिर कल्याणकारी कहा, शुभकारी कहा, मंगलकारी कहा, ये कितने अच्छे अर्थ है। आजकल मनुष्यों के तो नाम के अर्थ पता नहीं, एक तो नाम अर्थ वाले निकलते ही नहीं है, और जिनके नाम है भी तो उनके अंदर गुण वैसे नहीं होते। शांतिलाल जी को देखो तो हमेशा यहां पर ऐसा लगता है कि प्रेस घुमानी पड़ेगी, हमेशा त्योरियां चढ़ी रहती है, और नाम उनका शांतिलाल होता है। किसी का नाम होता है सुखराम, है ना, लेकिन बेचारे बड़े दुखी होते हैं। तो हम लोग केवल अपने शरीर के टेम्पररी नाम धारण करते, लेकिन परमात्मा को कहते सदा शिव। सदा के लिए वो कल्याणकारी है, और गुणवाचक उनका नाम है, कर्तव्यवाचक और गुणवाचक नाम है। फिर उनका रूप है ज्योति, जो बताया बीज, उनका ज्ञान समझना चाहिए हमें कि वो कौन है, उस परम धाम का निवासी और सर्व के कल्याण हेतु केवल सृष्टि के अंत में अपना कर्तव्य करते हैं वो, जब धर्म की अति ग्लानी होती है। आज शाम को या मैं भी कल आपको बहुत सुंदर परमात्मा ने ये कार्य कैसे किया है और कैसे उसके द्वारा पवित्रता, शांति, उसकी स्थापना हो रही है। आज दुनिया के अंदर अनेक धर्म है, अनेक संप्रदाय है, पर क्या आपको घर गृहस्थ में रहते हुए संपूर्ण ब्रह्मचर्य में चलने वाले लाखों लोग एक जगह मिलेंगे? जबकि हर धर्म शास्त्र कहता है कि ये काम क्रोध ये विकार है, ये नरक के द्वार है, सभी सुना रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल। लेकिन इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के पास ऐसे 15 लाख से अधिक सदगृहस्थ लोग हैं जो गृहस्थी में रहते हुए भी हमारी ही तरह संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे, इसीलिए वो महान योगी है। और यही पहला प्रूफ है कि परमात्मा के डायरेक्ट पवित्र ज्ञान ने उनको वो शक्ति और वो विधि दी, वो प्रैक्टिस दी, जिससे कि वो बन पाए हैं। तो परमात्मा का ये कर्तव्य है, वो आया ही है सबको पावन बनाने, मनोविकारों को मिटाने। अगर मनोविकार ही न मिटे तो धर्म की शरण में जाके भी क्या हुआ, समाधान तो होना ही नहीं है। परमात्मा ने वो किया है। आप और अधिक जानेंगे, यहां जितने भी लोग आपको मिले ना, जिन्होंने भी ये बेज लगाया, आप उनको पूछिए, आप केवल यहां लेक्चर न सुनिए। आप दिन भर में कोई खाना परोस रहा है, कोई कुछ और ड्यूटी कर रहा है, आप जरूर उनकी मुलाकात लीजिए, उनसे पूछिए कि आप कैसे इस ज्ञान में जुड़े हो, आप क्या करते हो, आपके जीवन की धारणाएं क्या है, आपको पता चल जाएगा। सिंपल एक गेट पे बैठा हुआ भाई है ना, वो भी महातपस्वी है यहाँ पे, वो भी बाल ब्रह्मचारी है यहाँ पे, और बहुत सहज और बहुत खुशी से उनका जीवन चल रहा है। तो इन परमात्मा की कई कर्तव्य है। तो परमात्मा का मूल नाम ही है शिव। अब उनकी विशेषताएं भी हम देखेंगे। वैसे तो कहते हैं कि तेरा वर्णन कर ना पाए हम, सागर को स्याही बना दे, सारे जंगलों को कलम बना दे, और सरस्वती लिखे तो भी न लिखी जाए, इतनी उनकी अपरम अपार अगाध सागर है ना। परंतु फिर भी मुख्य विशेषताएं, वो परम शक्ति है, उनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं। वो पतित पावन है, परमात्मा के समीप आना योग लगने से आत्मा के अंदर के पतित संस्कार, जो गिरी हुई भावनाएं हैं, वो उठ जाती है, और आत्मा जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। वो पतित पावन है, वो त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोकों का कल आपने चित्र देखा, वो तीनों लोकों के नाथ है, सर्व गुणों के सागर है, कल्प वृक्ष जो ये संसार रूपी वृक्ष है, जिसका गीता में भी वर्णन है कि मैं उसका बीज हूं, ये समस्त वृक्ष संसार मेरी रचना है, तो वो सुप्रीम बीज है, वो मुक्तिदाता है। हर दुख के समय दिल से आवाज किसके लिए निकलती है, अपने आप आवाज कौन सी आती है, हे प्रभु मुक्तिदाता। किससे मुक्ति दिलाते हैं, पहले हमें मनोविकारों से मुक्ति दिलाते हैं, फिर इस संसार के सारे जन्मों से फ्री होके हम एक बार अपने घर की ओर परम धाम चलते हैं, उसकी राह दिखाते हैं। वो त्रिकालदर्शी है, आदि मध्य अंत संसार का क्या है वो स्पष्ट करते हैं। वो भी आपको लेसन मिलेगा कि ये समय का चक्र कहां तक पहुंचा है, ये भी परमात्मा ने क्लियर किया है कि अभी कलयुग का भी अंत काल चल रहा है, और बहुत जल्द अब सृष्टि का चक्र परिवर्तित होने वाला है, और वो सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्तियों से आज आप ये जो भी रचना देख रहे हैं, हम जैसी 45,000 बहने पूरे विश्व में जो कार्य कर रही हैं, ये हमारा नहीं है, ये शक्ति उसकी है, ये सर्वशक्तिमान है जो इस विश्व भर में शांति का काम कर रहे हैं। तो परमात्मा के ढेर सारे और भी गुण हैं, दिव्य बुद्धि के दाता, मनुष्य को देव बनाने वाला, भाग्य विधाता, स्वर्ग का रचयिता, त्रिमूर्ति, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु जी के द्वारा पालना, और शंकर जी के द्वारा विनाश, ये भी उनके परम कर्तव्य है। इसलिए इंग्लिश में GOD जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, बहुत सुंदर जोड़ के बनाया हुआ शब्द है। वो तीनों ही कार्य करने वाले वो ही है। इसलिए शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड दिखाते, शिव के भक्त यहाँ भी त्रिपुंड बनाते, तीनों के तीन महान कार्य कराते हैं। ज्ञान के दाता, परमात्मा का सबसे बड़ा गुण है ज्ञान के सागर। तो हम सभी इन सारे गुणों में से एक मिनट जरा विचार कर लें। मैं उनका बच्चा हूं, इनमें से मुझ में कितनी क्वालिटी है? हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी रचना है। आज की तारीख में नहीं भी है तो चलिए एक सुंदर सा संकल्प कीजिए। हे प्रभु, आनंद दाता, ज्ञान सागर, आज मैंने आपके इन गुणों को जाना है। मैं भी इन गुणों से अपने जीवन को गुणवान बनाने की यात्रा अवश्य आरंभ करूंगा। दिल से बोला कि रिपीट किया? दिल से बोला, हाथ खड़ा कर दीजिए। दिल से बोला ना, दोबारा बोल रहा है। जरूर लास्ट में हम कॉमेंट्री से योग करेंगे, तब इन बातों को रिपीट करेंगे, ठीक है? देखिए, दिल से बोलने से तुरंत उसके पास आवाज जाती है, ये ऑलरेडी यू आर कनेक्टेड विद गॉड। आप सभी योगी है, आपके दिल की आवाज तुरंत उसके पास पहुंचती है। बस यही यहां सीखना है कि बस उससे बात करके तो देखिए, लेकिन उसके सही स्वरूप पे अपने आप को एकाग्र कीजिए। आत्मा और परमात्मा में क्या समानता है? कुछ लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। आत्मा ही परमात्मा नहीं है, परंतु कुछ बातों की समानता भी है। आत्मा भी दिखाई नहीं देती किसी को, अपने सामने शरीर छोड़ते हम देखते हैं कि अभी अभी जिंदा थे, अभी अभी डॉक्टर ने कह दिया गए, है ना, गर्दन लुढ़क गई, आंखें फटी रह गई या कुछ और, लेकिन हमने कुछ देखा नहीं कि वो क्या था जो निकला, ठीक है? वैसे ही परमात्मा को इन सूक्ष्म चर्म चक्षु स्थूल चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता, न आत्मा को न परमात्मा को। दूसरा, वो चैतन्य है। आत्मा भी चैतन्य है, परमात्मा भी चैतन्य है। आत्मा भी ज्योतिर्मय बिंदु है, परमात्मा भी ज्योतिर्मय बिंदु है। देखिए, स्वरूप पता होगा तभी तो आप कॉन्शियस में लाओगे और उन पे ध्यान आपका एकाग्र होगा। आत्मा भी मरती नहीं, क्रिएट नहीं होती, परमात्मा को भी ना क्रिएट किया किसी ने, नहीं वो कभी खत्म होते, अविनाशी है और स्वप्रकाशित है। ये कोई वो लाइट नहीं है जो एलईडी लगा के या कुछ करंट से हमने चालू की है, वो स्वप्रकाशित है। आत्मा भी, परम आत्मा भी, ये तो है इनके बीच की कॉमन चीज है। लेकिन कुछ चीजों में अंतर है फिर आत्मा और परमात्मा में, ये भी जानना आवश्यक है। आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। आत्मा गर्भ से जन्म लेती, हर एक को जन्म लेना है धरती पर आकर। परमात्मा जब भी आते हैं अवतरित होते, इसलिए कहा कि उनकी यादगार में भी उतारा जाता है उनको, है ना, गर्भ से मार्ग से जन्म नहीं लेते हैं, तो इसलिए वो द्वार से प्रवेश नहीं करवाते हैं शिवलिंग को, अवतरित होते हैं। आत्मा देह धारण करती है, परमात्मा सदैव देह से न्यारे है। आत्मा भोगता है, सुख भी भोगती है, अनुभव करती है, दुख भी भोगती है, है ना, लेकिन परमात्मा सुख से, दुख से, गर्मी से, सर्दी से, निंदा, ग्लानी, खुशी, दुख, इन सब से परे है, अभोक्ता है। आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में अवश्य आती है, परमात्मा जन्म मरण के चक्र से, इसलिए हम ये कभी नहीं कहेंगे आत्मा ही परमात्मा, नहीं, आत्मा संतान है, परमात्मा पिता है, वो रचयिता है, हम उनकी रचना है। तो डिफरेंस होगा तभी तो याद करेंगे। मैं ही परमात्मा हूं तो मैं याद किसको करूंगी? मैं मुझे खुद को याद करूंगी? नहीं ना, तो वो कहीं ना कहीं दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, तभी तो हम उनको याद करेंगे। तो याद करना ही योग है, इसलिए योग से पहले आपको ये दो लेसन बहुत अच्छे से समझना होता है, एक आत्मा का परिचय और एक ये परमात्मा का परिचय। ये दो अगर स्पष्ट हो गया ना, तो फिर आप जैसे बैठेंगे आपके वार्तालाप में स्वयं आत्मा और उस परमात्मा से आपकी तुरंत वार्तालाप शुरू हो जाएगी। तो क्लियर विजन के लिए हम पहले ये बताते हैं, तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है, और जो आपको कहा सर्व धर्म में कैसे मान्यता है, तो वो भी थोड़ा सा आप देख लें। भारत में तो आपने देखा ही है, प्राचीनतम जो मंदिर है वो सारे ज्योतिर्लिंग जिसको कहते हैं, और वो आप ही प्रकट हुए, कहीं ना कहीं किसी न किसी को पता चला और फिर वहां स्थापना हुई। तो ये परमात्मा के अनेक मंदिर है ही है। जो भी भारत के अंदर हम लोग देवताओं को पूछते, उन्होंने भी ये साबित किया है कि उनके जीवन काल में भी उन्होंने कहीं ना कहीं इंगित किया, जैसे राम, श्री राम ने रामेश्वरम में पूजा की है ना, श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में गोपेश्वरम का मंदिर में यादगार है कि शिव पूजा की, गौतम बुद्ध जिसके लिए हमने कहा ही कि उन्होंने गुणों को ईश्वर माना, शंकर जी की भी जब प्रतिमा आप देखते हैं तो सामने शिवलिंग होता है और वो खुद हमेशा ध्यानस्थ अवस्था में बताए जाते हैं। तो आपको ये रहस्य शायद कईयों को पहली बार ही पता चला होगा कि शंकर जी और शिव जी अलग अलग है। शंकर जी जिन्होंने तपस्या की है सृष्टि के विनाश के लिए, उनका दिव्य नेत्र बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये हमने सारी बातें सुनी है जो आगे चलकर आपको और समझ में आएंगी कि कैसे वो तीसरा नेत्र भी काम करता है। तो वो तपस्या करते मीन्स उनसे ऊपर उनके आराध्य कोई तो उनके आगे भी शिवलिंग रखा जाता है, ज्योतिर्बिंदु है ना। तो शिव है वो कल्याणकारी है, शंकर जी का कार्य सृष्टि में तमोप्रधानता का नाश करने का है, तो ये भी अलग है। इसी तरह से महावीर स्वामी जी एक तीर्थंकर के रूप में, अनेक तीर्थंकर हुए लेकिन उन्होंने भी ध्यानस्थ स्थिति में अपना जीवन लंबा समय बिताया, क्योंकि वो बिंदु स्वरूप का ही ध्यान किया। इस्लाम के अंदर जिनको अल्लाहु अकबर कहते हैं या जिनका काबा में ज्योतिर्मय पत्थर है जिसको नूरे इलाही कहते हैं, तो वो भी नूर इलाही, सुख देने वाला नूर, सुख देने वाली ज्योति, वही है नूरे इलाही। इसलिए परमात्मा के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो शिक्षाएं मिलती है उसे सब धर्म सब पंथ के लोग अपनाते हैं। कुछ अधिक मात्रा में असनातनी अपनाते हैं अलग बात है, लेकिन सभी धर्मों के लोग फिर भी आपको इस संस्थान में आपको मिलेंगे, क्योंकि एक कॉमन फैक्ट की तरफ ले जाते हैं, किसी परंपरा के आधार पे नहीं, लेकिन मूल तत्व की व्याख्या यहाँ पर स्पष्ट की जाती है। तो ईसा मसीह ने भी जैसे बताया, कहा एक ईश्वर है, तो यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने भी उसी निराकार ज्योति का दिव्य साक्षात्कार भी किया और फिर उनके द्वारा ही हमने ये सारे ज्ञान को समझा है। तो आशा ही नहीं, हम पूरा विश्वास रखते हैं। पहली बात ये बताइए कि यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमें इतने जन्मों की थकी हुई आत्माओं को ये लग रहा है कि अब तो राइट टाइम इज दिस, तो क्या ऊपर बैठे भगवान को नहीं लगा होगा कि दिस इज द राइट टाइम, हमें लगने लगा है? तो हम आपको ये बता रहे हैं, इंतजार की घड़ियां ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है, परमात्मा ने स्वयं अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। लेकिन जैसे इतने बड़े विशाल युद्ध के बीच में भी जब साक्षात्कार हुआ ना, तो एक अर्जुन को ही हुआ, जबकि वहां अक्षौहिणी सेना भी थी, अन्य पांडव भी थे, परंतु मिला किसको वो साक्षात्कार, हुआ किसको, पता चला किसको कि ये साक्षात ईश्वर है? अर्जुन को। ऐसा क्या था उसके पास? दिव्य दृष्टि उसे पहले प्राप्त हुई, उसका तीसरा नेत्र खो। पहले तो उसको भी बहुत प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे कि मैं क्यों मानूं केशव तुम्हारी बातों को, मैं क्यों अपने ही लोगों के ऊपर तीर चलाऊं। बहुत वाद विवाद हुआ, संवाद हुआ, उसके बाद अंततः कहा कि अब मुझे मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे अपनी स्मृति प्राप्त हो गई, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अब केशव तुम जो कहोगे बस मैं वही करूंगा। तो वो जो अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई, इसके तीन स्टेप थे। पहला प्रश्न उत्पन्न हुआ, जिज्ञासा हुई, दूसरा जीवन में वैराग आया, वैराग की स्थिति में है ना अर्जुन, विषाद योग से तो गीता शुरू होती है। तो प्रश्न भी उत्पन्न हुआ, वैराग्य भी उत्पन्न हुआ और फिर परमात्मा के आगे सरेंडर किया, वो दिव्य दृष्टि से जो मिला तब जाके उसको पता चल गया कि ये कार्य किसका है। बस उसी थ्री स्टेप्स से गुजरना हम सबको बाकी है, बाकी उसका कार्य शुरू हो गया है। अब डिपेंड ऑन यू कि आप ये तीनों स्टेप से कब पार हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे कुछ जी, जवाब नहीं मिला, मिल गया लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमें भी आप ही अर्जुन है, अर्जुन तो केवल एक प्रतीक है, अर्जुन कोई एक नहीं होगा, भगवान का अवतरण किसी एक के लिए नहीं होगा, वो विश्व कल्याणकारी है। जो आत्मा ज्ञान अर्जन करती है उसी को कहेंगे अर्जुन। जो अपने इन दो आंखों के अलावा तीसरी आंख से देखना शुरू करेंगी वही है दिव्य दृष्टि। तो अभी दो आंखों से हमने बहुत कुछ देखा, देह को देखा, चीजों को देखा, दृश्यों को देखा, अब योग में बैठना माना तीसरी आंख से देखना, ज्ञान चक्षु से, द थर्ड आई ऑफ विजडम से देखना। जिसको भी देखें आत्मा को देखें, ये नर है, नारी है, कलिग है, ये है, तीसरी आंख से देखना पहले प्रारंभ करना होगा। सेकंड, संसार की इच्छाओं से परे। अब हमने बहुत देख लिया, अब हमें कुछ पाना है ना, तो उस कछुए की तरह जो शिव जी के सामने होता है क्या करना होगा, इंद्रियों के रस बहुत भोग लिए, अब हम थोड़ा अपने आप को संकीर्णता में लाएं, समेटें और एक रस बने, एक का रस पाने के लिए तत्पर रहे। प्रभु तेरा अनुभव करना ही है, प्रभु तुझे पाना ही है, जिद करें, हट करें। बस ये तीव्रता जो है ना, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि परमात्मा कैसे। बिल्कुल, जीवन समर्पण किया है तो कुछ प्राप्ति हुई है ना, बस आपको भी स्टेप बाय स्टेप। देखिए क्या होता है, ब्लर होता है कभी कभी पिक्चर, वो ब्लर कब होता है, उसको क्लियर करना पड़ता है। तो अभी तक हमारे सामने कुछ ब्लर पिक्चर है, उस ब्लर को दूर करना है, और वो आएगी जब मानसिक पवित्रता हमारी बढ़ेगी, निरंतर अभ्यास। गीता में दो ही बात कही है, हे अर्जुन तुझे अभ्यास करना है और वैराग्य धारण करना है। वैराग्य का मतलब ये कतई नहीं समझना कि जाकर के ड्यूटी से रिजाइन करना है, या अपने घर वालों को कह देना है कि बस कल से सफेद कपड़ा पहनूंगा और मेरे से कुछ उम्मीद मत रखना, कमा के दूंगा कि नहीं दूंगा, ये सब नहीं करना है। वैराग्य का जो लेवल है ना वो बहुत सूक्ष्म है। जैसे जनक, महाराजा जनक की बात है शास्त्रों में कि वो सारे वैभवों के बीच में महान विदेही कहलाए, है ना। तो हमें सब कुछ करते हुए कर्मयोगी बनना है, केवल आंतरिक रूप से ये लक्ष्य हो कि अब इंद्रियों के सुख को बहुत देखा, अति इंद्रिय सुख, आत्मिक सुख की ओर चलना है, और परमात्मा के आगे सरेंडर करना है। सरेंडर माना सर झुकाना है, अपने अहंकार को झुका के ना। गीता में अर्जुन ने यही कहा कि अब बस, अब तुम जो कहोगे अब मैं करूंगा, पहले तो उठाने को तैयार ही नहीं था, गांडीव इतना अच्छा था उसके पास, है ना, उठाने को तैयार नहीं था, इतना वैराग आ गया था, पर अब जो है तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। तो परमात्मा की श्रीमत की अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्रतिदिन उनके महावाक्यों को समझने के लिए स्वाध्याय करना, जीवन में यथा संभव पूर्ण ताकत लगा के संपूर्ण पवित्रता को अपनाना, और प्रतिदिन वो अभ्यास चालू रखना। जो योग के लेसन में, नेक्स्ट लेसन में आपको चार पिलर ऑफ राजयोग बताए जाएंगे, वो आप करके शुरू करो। आपके सामने है परमात्मा, बस आपको अनुभव करने की देरी है। ईश्वर ये कार्य अपना स्वयं कर रहे हैं, 90 साल हो चुके हैं, सिर्फ आपके लिए परमात्मा रुके हुए हैं कि अभी तक आप नहीं बने हैं, तो 100 साल पूरे तब तक हो गए नहीं, और तब तक परमात्मा अपना कार्य सृष्टि परिवर्तन का भी नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि वहां मैं नहीं आया था तब तक भगवान रुके हुए थे, तो वहां मैं भी कुछ, तो अब मैं आ गया हूं तो अब मुझे बनना है। तो चलेंगे कुछ देर के लिए, बंद कर देंगे स्क्रीन, बंद कर दीजिए। इस ईश्वरीय कार्य को 1936 से, लगभग 36 के हाफ से, पहला दिव्य साक्षात्कार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को हुआ, जिसकी मैंने कहा ना आज क्या सेशन है, जिसमें आपको पूरा बाबा की हिस्ट्री पर शिलू दीदी या भाई साहब आपको सुनाएंगे तो आपको क्लियर होगा। तब से परमात्मा ने ये आध्यात्मिक आंदोलन शुरू किया, इसलिए इस संस्थान का हम नव दशकोत्सव मना रहे हैं। और इस 90 साल की यात्रा में अब तक ये 15 लाख ही नहीं, 15 लाख लोग तो संपूर्ण रूप से पवित्र जीवन जी रहे हैं, करोड़ों आत्माओं ने जीने की राह पाई है, उनके आंसुओं को परमात्मा ने पहुंचा है। और ये जो इतना पूरे विश्व में आप शांति के आंदोलन को देख रहे हैं, ये उसी परमात्मा का दिव्य कार्य है। और हम आशा ही नहीं, विश्वास करते हैं कि आप भी जरूर इस दिव्य कार्य को अपने दिव्य चक्षुओं से पहचान कर और अपने जीवन को परमात्मा मिलन की ओर आगे बढ़ाएंगे। अब बस एक कदम की दूरी है, ये समझ लीजिए आप पहुंच गए हैं। ठीक है, ओम शांति। फिर भी किसी को कुछ है तो आप 4 दिन यहाँ हैं, पर्सनली भी यहाँ बहुत से हमारे सीनियर भाई बहने हैं। जी जी जी, परमात्मा उत्तरित होते हैं। परकाया प्रवेश प्रकृति को अधीन करके, इसीलिए जो नेक्स्ट स्टेप में आपको समझना है कैसे प्रजापिता ब्रह्मा के तन में उस ज्योति का अवतरण हुआ, और उसके बाद उनके पहले अपने जीवन में ही दिव्यता आई। और परमात्मा जब अवतरित होते थे तो ब्रह्मा स्वयं भी सुनते थे, उनके द्वारा वाणी जो चली, बाबा का फेस, बाबा का आवाज वो नहीं था। राम और कृष्ण सतयुगी, परमात्मा ने जो बेस्ट वर्ल्ड बनाई उसमें सबसे पहले, क्योंकि उन आत्माओं ने संपूर्ण पवित्रता को धारण किया, और इसलिए जो सतयुग का सबसे पहला जन्म वो श्री कृष्ण जी को माना, प्रथम अवतरण ही उनका होगा। बिल्कुल हाँ जी। और दूसरा युग जो है वो राम, श्री राम जी के द्वारा, वहां के पूरी पालना संचालक के रूप में, उस युग के वो समझो द बेस्ट सोल के रूप में उस समय, क्योंकि परमात्मा तो हर युग में आते नहीं है, तो वो तो ऊपर रहेंगे, तो उस समय के लिए वही सर्वश्रेष्ठ के रूप में धरती पर होते हैं। तो कहते हैं ना, भगवान अपनी खुद की जैसा ही बनाता है, तो परमात्मा ने अपने समान उस युग के उनको देव के रूप में बनाया। तो आप अपने अपने सेवा केंद्र पे जाके जो 7 डेज का कोर्स है ना, उसमें का ये 2-3 लेसन तो आपको यहाँ हो जाता है, 2-3 लेसन्स बाकी रहते हैं, वो भी आप जरूर कर लेंगे तो अध्यात्म का एक पूरा कंप्लीट विजन क्लियर हो जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। अभी हम मेडिटेशन की यात्रा पे चलेंगे, थोड़ा सा सीधे होके बैठ जाएं, सुस्ती तो अब नहीं रही है, किसी को नहीं दिखाई दे रही है। रेड लाइट हमें अपने संकल्पों के ट्रैफिक को रोकने के लिए की जाती है, बाकी आवश्यक नहीं है, कहीं भी कैसे भी हम योग कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेके 2 बार सांस को छोड़े और शिथिल छोड़ दे शरीर को, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दे। कभी भी स्ट्रेस में नहीं बैठे कि ऐसे बैठूं कुछ दिखाई दे जाएगा, नो, कभी कुछ नहीं दिखने वाला है, दिखना है ही नहीं, पहली बात क्लियर कर लो, दिखना कुछ नहीं है, अनुभव करना है। तो रिलैक्स होके बैठे, जैसे एक नेचुरल फॉर्म में आप बैठे, लेकिन इतना आराम से रिलैक्स होके बैठ जाए कि नींद आ जाए वो भी ठीक नहीं है, इसलिए सीधी हो हमारी बैठक। दोनों हाथ इस तरह से साथ में जुड़े हों तो अच्छा है, आंखें खुली हो, आंखें खुली होने से अंतर चक्षु भी अधिक एकाग्र और सचेत रहते हैं। जब हम आंख बंद करते हैं तो यहां का तो नहीं दिखता है, लेकिन दूर दूर का दिखने लगता है, कल का भी दिखने लगता है, बाहर पड़ी चप्पल भी दिखने लगती है। इसलिए आंखें बंद नहीं करते हैं। राजयोग कर्मयोग भी है, इसलिए भी आंखें खुली रखते हैं। सबसे पहले अपने आप को पूछें, मैं कौन हूं? पूछें, खुद को पूछें। ये जो इतना भारी स्थूल तत्वों का देह है, ये तो मैं नहीं हूं। इस देह को धारण करने वाला मैं ज्योतिर्मयी बिंदु आत्मा हूं। स्वीकार होता है, स्वीकार हो रहा है, मैं आत्मा हूं। कहां हूं? जैसे एक पूरे हॉल में एक कुर्सी पर आप बैठे हैं, हॉल तो इतना बड़ा है, वैसे विजुलाइज करें, शरीर इतना बड़ा है, उसमें मस्तक है, मस्तक की ओर ध्यान ले जाएं अपना, दो आंखें हैं जहां से आप देख रहे हैं, तो आंखों के मध्य ललाट या भ्रकुटी जिसे कहते हैं, आज्ञा चक्र जिसे योगियों ने कहा है, साइकोलॉजी जिसे सर्वोच्च ऊर्जा केंद्र कहती है, भौतिक विज्ञान के अनुसार जहां हमारी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ब्रेन का आगे का हिस्सा, मैं दो आंखों के बीच मस्तक में चमकने वाली ज्योति आत्मा हूं। बिल्कुल लाइट, मैं शांत हूं। पवित्र हूं। मैंने कई जन्म लिए हैं, कई बार देह धारण की, छोड़ दी, पुनः दूसरी देह धारण की, ऐसे मेरी यात्रा अनंत की है। मेरी कभी मृत्यु नहीं, केवल देह धारण करना और छोड़ना। तो मेरा क्या है? ये तन भी टेम्पररी, इस तन से जुड़ी पहचान भी टेम्पररी, समस्त क्वालिफिकेशन, संसाधन, अचीवमेंट्स टेम्पररी। मेरा क्या? पूछें अपने आप को, मैं संकल्प शक्ति की मालिक हूं। मेरे संकल्प मेरा मन है। देखें मेरा मन कैसा है। जब मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, तो मेरा मन मेरे अनुसार चलता है। मुझे अपने मन का मालिक बनकर मन को चलाना है। श्रेष्ठ विचार मेरी संपत्ति है। मैं बुद्धि का मालिक हूं। बुद्धि अर्थात सही और गलत की समझ, निर्णय शक्ति। मुझे निर्णय जीवन में करना है। मैं ही कर सकता हूं। सब कुछ है मेरे सामने। मुझे अपनी आत्मोन्नति के लिए चूज करना है। क्या सही है, किस ओर जाना है? हे मेरी बुद्धि, तू सही रास्ते पर चल। किसी प्रभाव से परे, प्रलोभन से परे, आकर्षण से परे। जन्म जन्म की स्मृतियां मेरे अंदर है, जो मेरी आदतें बन गई है, मेरे संस्कार, मेरी निधि है। मेरी असली पहचान भी मेरे संस्कारों से है। मुझे अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है, शुद्ध करना है, सुखदायी करना है। इसके लिए मुझे परमात्मा से शक्ति भरनी होगी। चलें परमात्मा के पास। स्थूल देह से थोड़ा सा ऊपर की ओर अपने कॉन्शियस से चलेंगे। हल्के होकर परम धाम परमात्मा के लोक में, जो मेरा भी मूल निवास है, जहां चारों ओर शांति है, शक्तिशाली प्रकंपन है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, उस परम ज्योति के दिव्य लोक में, उनके समीप हूं। पहुंचाए मन से परम ज्योति परमात्मा, और मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, बहुत समीप है। बात करें प्यारे प्रभु, मैंने समझ लिया है कि सृष्टि के कर्ता, रचयिता, देवों के देव आप परम शक्ति हो। मैं आपकी सुंदर रचना हूं। जैसे आप परम पवित्र हैं, गुणों के भंडार हैं, मुझे भी अब ये संकल्प है कि इन समस्त गुणों को धारण कर आपके समान बनना है। प्रभु मुझे बहुत आपसे प्रेम है, खुशी है कि कलयुग के अंधकार को मिटाने आप सद्ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। मैं भी आपके परम ज्ञान को प्राप्त कर पवित्रता और शांति के मार्ग पर चल पड़ा हूं। परमात्मा के दिव्य स्वरूप से अपने में ऊर्जा को भरें, जन्म जन्म की आत्मा में संचित स्मृतियां जिसके अंदर की विकृति परमात्मा के प्रकाश से नष्ट हो जा रही है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की यही एक अनुभूति है कि अंदर के केमिकल्स बदल जा रहे हैं। ये खुशी, ये भाव नए हार्मोन्स क्रिएट कर रहे हैं, आनंद, खुशी, प्रेम, ऊर्जा का अनुभव। ये एकाग्रता, ये पवित्र वातावरण मुझे रचनात्मक संकल्प दे रहे हैं। अब तो प्रतिदिन इन्हीं अनुभवों को करते रहना है। एक प्यारा सा वायदा परमात्मा से करें, ओ मेरे परम पिता, जितना भी मैंने आपको पहचाना है, मैं आपका छोटा सा प्यारा बच्चा हूं, मेरा हाथ पकड़कर मुझे सकारात्मक राहों पे चलाएं। प्रभु तम के अंधकार से ऊपर उठा दे। प्रभु मैं आपका ये सानिध्य हाथ पकड़े रखूंगा, वायदा करें परमात्मा से। अब मुझे अपनी आत्मा उन्नति करनी ही है, जीवन की पवित्रता को पाना ही है। मैं भाग्यवान हूं, मुझे सानिध्य मिला प्रभु का, मेरी शक्तियां उजागर हो रही है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तो एक परिवर्तन का पवित्र संकल्प करें, आज से अभी से मुझे क्या बदलना है, अपने में क्या परिवर्तन लाना है। सोच लें, पवित्रता के मार्ग पर बढ़ाया हुआ एक कदम मंजिल की ओर ले जा रहा है। बहुत जल्द मुझे जीवन में निरंतर अभ्यास को धारण कर एक नए स्वरूप को पाना ही है। संकल्प लेकर वापस लौटें कर्म क्षेत्र पर इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे उमंग और उत्साह से, आज से अभी से लगे रहेंगे। ओम।